आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से एक जर्मन क्रूज ने वापस जाने से इनकार किया। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले पर होगा केस दर्ज और खिलाड़ियों की मदद का सिलसिला जारी। और अब समाचार विस्तार से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक क्रूज शिप ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस क्रूज में 40 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। द अटानिया नाम के इस क्रूज को ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने फ्रीमेंटल पोर्ट से जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जहाज चालक दल के सदस्यों ने कहा है कि वो अभी 2 हफ्ते और यहाँ रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस क्रूज के 41 लोगों का अभी पर्थ के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रशासन को अंदेशा है कि क्रूज में और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट आ सकता है। प्रीमियर मार्क मैकगोवन ने केंद्र सरकार से इस स्थिति का जल्द समाधान करने का आग्रह किया है।
There's 12 passengers who have remained on board that we didn't know about, and they are have various reasons for wanting to stay on board. If they stay on board and sail with the ship, well then I'm fine with that. If they come ashore under quarantine and fly home, well then that could be another solution.
बढ़ते आगे, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ग्लेडिस बेरेजेक्लियन ने व्यवसाय जगत से प्रदेश में ज़रूरी मेडिकल उपकरण की कमी को पूरा करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि राज्य में अब तक 9 लोगों की कोविड-19 के संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमित लोगों का राज्य में आंकड़ा 2,182 पहुँच गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 95 साल के एक शख्स की एक नर्सिंग होम में मौत के बाद कुल मरने वालों की संख्या 20 पहुँच गई है। ये महिला सिडनी के डोरोथी हैंडरसन लॉज एज केयर में रहती थी। सुश्री बेरजेक्लिन ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य में हर किसी को अपनी ओर से योगदान देने की ज़रूरत है।
I'm calling on the great people of our state, those great business people, those manufacturers who are able to retool, to consider retooling, to help supply those additional things we'll need in coming months, whether it's sanitizers, whether it's medical equipment, and a whole host of other things which our hospitals will rely on.
ऑस्ट्रेलिया लोगों से आग्रह कर रहा है कि वो जल्द से जल्द फ्लू का टीका लगवा लें, ताकि लोग एक ही समय में फ्लू और कोविड-19 के खतरे से बच सकें। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 13.5 मिलियन से ज़्यादा टीके सुरक्षित कर लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्लू का सीज़न जून से सितंबर के बीच सबसे ज़्यादा होता है। प्रशासन का मानना है कि अप्रैल में वैक्सीन लगवाने से इस सीज़न में फ्लू से बेहतर सुरक्षा हो सकती है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर स्टीवन मार्शल ने 6 क्वांटस के सामान संचालकों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद एडिलेड के हवाई अड्डों के बंद करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। उनका यह बयान उस समय आया है जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने कुछ नए मामलों को इन सामान संचालकों से जोड़ा है। उनका कहना है कि करीब एडलेट के 100 कर्मचारियों को 2 हफ्ते एकांतवास में बिताने होंगे। श्री मार्शल ने कहा कि अगर विशेषज्ञ सलाह देते हैं तो वो एडिलेट हवाई अड्डे को बंद करने के लिए तैयार हैं।
To be very clear, we will take our advice from the health professionals, and whatever advice that is, we will put it into action straight away, regardless of what it is. Our primary focus is on ensuring the health, safety and welfare of all South Australians. We're in the midst of a major emergency in South Australia. We will follow to the letter all of the directions that we receive.
एक खबर है तस्मानिया से, जो कि अच्छी खबर कही जा सकती है। तस्मानिया के प्रीमियर पीटर गटवेन ने लोगों से लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले एक दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इस हफ्ते कोविड-19 के संक्रमण से यहां पर 2 बुजुर्गों की मौत हो गई थी, लेकिन मंगलवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया। ये पिछले 2 हफ्तों में पहली बार हुआ है। श्री गटवेन ने कहा कि क्रूज शिप और विदेशी यात्रियों के लौटने का दौर खत्म होता दिख रहा है।
We only need to look at what has occurred and what is occurring in other parts of the world and in other parts of this country in terms of the damage that this virus can inflict, the deaths that this virus can inflict, and we need to ensure that we do everything that we can. There has never been a more important time right now than to be disciplined, to be patient, to do the right thing and, importantly, to be kind to each other.
और अब खबरें भारत से. भारत में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1400 के पार पहुंच चुकी है और करीब 35 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है. बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में 146 नए मामले सामने आए हैं. हालांकि अभी तक देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है जो 14 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लॉकडाउन का पालन ठीक ढंग से नहीं किए जाने के मामले बढ़ रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निज़ामुद्दीन मरकज़ के मामले को बेहद गंभीर बताया है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर FIR दर्ज करवाने के लिए उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई अधिकारी भी दोषी है तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा. इससे पहले कल निज़ामुद्दीन के मरकज़ से 2100 से ज़्यादा लोग निकाले गए थे. अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इनमें से 441 में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण थे. हालांकि अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है.
कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने LG साहब को लिखा था कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए. मुझे पूरी उम्मीद है कि LG साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे. और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया. इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी. अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है.
COVID-19 के संक्रमण से ठीक होने वाली बिहार की एक महिला अनीता विनोद ने लोगों से अपील की है कि वो सरकार की सलाह मानें और सुरक्षित रहें. उन्होंने बताया कि उन्हें पॉजिटिव पाए जाने के बाद एकांतवास में रखा गया था और अब जबकि उनके 2 टेस्ट निगेटिव आए हैं तब भी उन्हें 14 दिन के एकांतवास में ही रहने की सलाह दी गई है.
मैं बिहार का पहला व्यक्ति हूँ जो कोविड से बच गई है. मैं मार्च 20 तारीख को मेरा एम्स पटना में जांच हुआ था और रिजल्ट 22 को आया कि मैं पॉजिटिव हूँ. और पॉजिटिव होने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे आइसोलेशन वार्ड में रखा था. 11 दिन के बाद मैं 2 नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उधर से डिस्चार्ज हुई हूँ. और समाज से मुझे ये बोलना है कि जो सूचनाएँ हमारा सरकार ने हमको दिया है पूर्ण रीति से उसको पालन कीजिएगा.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स विभाग ने COVID-19 के टेस्ट की नई तकनीक के इजाद का दावा किया है. समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गीता राय ने बताया कि उन्होंने इस तकनीक में COVID-19 वायरस में पाए जाने वाले खास प्रोटीन सीक्वेंस को लक्ष्य बनाया है. उन्होंने कहा कि बाजार में उपलब्ध मौजूदा तकनीकों की अपेक्षा ये तकनीक कुछ सस्ती होगी और उन्हें उम्मीद है कि ये छोटी लैब की पहुंच में होगी जिससे कि टेस्ट का खर्च कम हो सकता है.
तो हमने कुछ प्राइमर्स बनाए हैं जो कि डिज़ाइन किए हैं जो कि उस सीक्वेंस को टारगेट करती हैं जो कि COVID-19 में ही प्रेजेंट है. और ये जो सीक्वेंस जो है और किसी और कोविड के पुराने फैमिली मेंबर्स जो SARS जैसे करके आए थे 2003 वगैरह में उनमें ही नहीं प्रेजेंट है. जो हमारा मेथड है वो एक जो उसे चीपर PCR मशीन होती है जो 2 से 4 लाख के अंदर आ सकती है, तो उसको बेस करके हमने ये डिज़ाइनिंग की है. तो इसका यही उद्देश्य था कि छोटे डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह भी उनको परचेज कर पाएंगे और हो सकता है उसके फलस्वरूप जो टेस्ट ऑफ कॉस्टिंग है उस पर भी कमी आए.
और अब डॉलर का हाल. आज यानी बुधवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत भारतीय रुपयों में 46.34 रुपये थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 61 सेंट्स थी. और अब खबरें खेल के मैदान से. कोरोना वायरस की वजह से खिलाड़ी भी घरों में रहकर कोरोना से खुद का बचाव कर रहे हैं. ऐसे में टेनिस दिग्गज रॉजर फेडरर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो घर पर रहकर ट्रिक शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं. वीडियो को पोस्ट कर फेडरर ने कैप्शन में मजाकिया तौर पर लिखा है कि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रिक शॉट कैसे मारा जाता है, वो कहीं भूले तो नहीं हैं. आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में स्विट्जरलैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी ओर से $10,00,000 दान दिए हैं. भारत में भी खिलाड़ियों की ओर से आर्थिक योगदान जारी है. अब रोहित शर्मा ने 80 लाख रुपये दान में दिए हैं. रोहित शर्मा ने PM फंड में 45 लाख, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फंड में 25 लाख, तो वहीं फीडिंग इंडिया संस्था को 5 लाख रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा वेलफेयर स्टेट डॉग संस्था को भी उन्होंने 5 लाख रुपए का दान दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम अपने देश को फिर से वापस पटरी पर लाना है, जिसके तहत मैं अपनी तरफ से छोटा सा योगदान दे रहा हूँ। बता दें कि रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, विराट कोहली और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद दान देने की पहल शुरू कर दी थी। और अब डालते हैं नज़र कल्याणी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में ज़्यादातर छिटपुट बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में बारिश के साथ आंधी की संभावना है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में भी बारिश के साथ आंधी की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप के आसार हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।